ओम शांति। हम सभी के मध्य में विराजमान हैं उर्मिला बहन जी, और आप ज्ञानामृत के 7 वर्षों से सह संपादक भी हैं, और जो हरियाली ग्राम विकास प्रभाग के द्वारा निकलती है उस हरियाली के भी आप सह संपादक हैं। अभी हम उनके मुखारविंद से पुण्य का महत्व या पुण्य कैसे जमा हो इस विषय पर उनके विचार सुनेंगे। उर्मिला बहन जी, ओम शांति।
ओम शांति। आज का हमारा विषय है पुण्य आत्मा कैसे बने या पुण्य का खाता कैसे जमा हो। आप सबको याद होगा, अभी संडे बाबा ने एक मुरली चलाई थी, और उस मुरली में बाबा ने दान और पुण्य की बहुत अच्छी परिभाषाएं बताई थी, बहुत अच्छे से स्पष्टीकरण दिया था। ऐसे तो दान शब्द हम बचपन से सुनते हैं, भारत में दान का महत्व भी बहुत है, लेकिन दान शब्द अकेला यूज नहीं होता, अधिकतर दान पुण्य दोनों शब्द इकट्ठे यूज होते हैं। जैसे हम कहते हैं भाई तुमने कुछ जीवन में दान पुण्य किया, या फिर कहते हैं तूने कुछ जीवन में दान धर्म किया, तो धर्म का अर्थ भी पुण्य है और पुण्य का अर्थ तो पुण्य है ही। तो ये दोनों शब्द इकट्ठे प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या दान और पुण्य एक ही बात है, या दान और पुण्य में कोई अंतर भी है। दोनों में अंतर है, बाबा ने मुरली में स्पष्ट किया, और हमारी बोलचाल की भाषा में भी दोनों का अंतर हमें स्पष्ट महसूस होता है। जैसे कोई व्यक्ति देह त्याग देता है तो लोग चर्चा करते हैं भाई ये अपने साथ क्या ले गया, तो भले वो कितना बड़ा दानी रहा हो, लेकिन कहने में ये आता है कि ये अपने साथ अपने पुण्य की पूंजी ले गया, कोई ये नहीं कहता कि दान की पूंजी ले गया। इसी तरह से हम कहते हैं भाई अंत समय में तुमको क्या काम आएगा, अंत समय में तुम्हारा पुण्य काम आएगा। कोई प्राप्ति हो जाए तो कहते हैं भाई ये पुण्य के फल से प्राप्ति हुई है, कभी ये नहीं कहते दान के फल से प्राप्ति हुई है। तो दान और पुण्य में अंतर है, और पुण्य दान से ऊंची स्टेज है। इसलिए बाबा ने मुरली में कहा कि दान दिखावा भी हो सकता है और दिल से भी हो सकता है, लेकिन पुण्य कभी दिखावा नहीं होता, पुण्य तो हमेशा दिल से ही होता है। हमारे जीवन का उद्देश्य दान आत्मा बनना नहीं है, लेकिन पुण्य आत्मा बनना है। बाबा कहते हैं पुण्य आत्मा बनो, कोई कितना भी दान कर ले उसको दान आत्मा नहीं कहते, पुण्य आत्मा कहते हैं। बाबा ने कहा जो पुण्य आत्मा है उसको दिल की दुआएं मिलती हैं, दिखावे की बात नहीं है, शुक्रिया थैंक्स ये शब्द नहीं, लेकिन दिल की दुआएं उसके नाम पे गुप्त रूप में जमा होती जाती है। पुण्य आत्मा मान अपमान अभिमान इन सबसे परे सदा बेफिक्र बादशाह रहती है, खुश नसीब होती है। उसको आत्माओं की भी दुआएं मिलती हैं, परमात्मा की भी दुआएं मिलती हैं, इसलिए वो भरपूर रहती है, उसके चेहरे से खुश नसीबी झलकती है, तृप्ति का एहसास होता है। जो भी कोई उसके सामने आता है उसको भी वो तृप्ति का एहसास कराती है, खुद भी वो दुआएं देती है, वो भीतर से हलचल में नहीं आता, अपने समय को खराब नहीं करता, व्यर्थ बातों में उसका समय नहीं जाता। इसलिए बाबा हमें अंतिम लक्ष्य यही देते हैं कि आपको पुण्य आत्मा बनना है। जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद उसका रस बनता है, और वो रस कुछ समय के बाद मांस मज्जा जो हमारे भीतर हड्डियां मैदा जो भी कुछ होता है उसमें परिवर्तित हो जाता है। अगर भोजन अच्छा है संतुलित है तो उससे रस भी बनेगा, रक्त भी बनेगा, मांस मज्जा सब बनेगा, लेकिन अगर भोजन ठीक ना हो तो ये चीजें नहीं बनती। इसी तरह से दान अगर ठीक विधि से किया गया है तो उसका पुण्य निकलेगा, उसका पुण्य बनेगा। लेकिन अगर दान की विधि ठीक नहीं है तो हम पुण्य आत्मा बनी नहीं सकते, क्योंकि विधि से सिद्धि मिलती है, विधि ठीक नहीं है। इसलिए बाबा ने दान किस विधि से किया जाए ताकि वो पुण्य में परिवर्तित हो जाए, उसकी विधि हमको सिखाई है। भक्ति मार्ग में भी कुछ कुछ बातों को हम जानते थे, लेकिन ज्ञान मार्ग में उन बातों को हम और गहराई से जान गए। जैसे कहती हैं, वही दान महापुण्य बनता है जो गुप्त किया जाए, गुप्त दान महापुण्य ऐसे कहते हैं। अब गुप्त दान का मतलब होता है कि एक हाथ से करो तो दूसरे को पता ना पड़े, और इसलिए कहावत बनी, नेकी कर दरिया में डाल। अब आजकल लोग क्या करते हैं कि गणेश की मूर्ति बना के उसे तो दरिया में डाल देते हैं, दुर्गा की मूर्ति बना के पूजा करके उसको दरिया में डाल देते हैं, लेकिन अपने दान को कभी भी दरिया में नहीं डालते। दान को तो पत्थरों पे लिखते हैं, पंखों पे लिखते हैं, और कई बार तो आप मंदिरों में जाएंगे ना तो ऐसी जो संगमरमर की फर्श में चौकोर वो चौका लगा होता है, हर चौके के ऊपर एक नाम लिखा होगा, सीढ़ियां चढ़ते जाओ और उन नामों की माला फेरते जाओ। अब वास्तव में दान का उद्देश्य तो ये था कि जो व्यक्ति दान के द्वारा बनाई गई चीज का उपभोग करे तो उपभोग करते समय उसके मन से भगवान के लिए थैंक्स निकले कि भगवान बाकी तो सब जगह किसी किसी की हैं, पर ये एक जगह तो तेरी है, मैं यहां आकर के सुकून से बैठा हूं, मुझे बड़ी शांति मिल रही है, यहां आकर के मुझे तेरी याद आ रही है, ये उद्देश्य था। हम जो दान करें उससे लोगों को लाभ मिले और उस लाभ को पाकर के वो भगवान को थैंक्स करें, भगवान की समीपता का अनुभव करें, भगवान का प्यार उनके दिल में जागृत हो। लेकिन आजकल लोगों ने दान का जो दिखावा करना शुरू किया तो उसका परिणाम क्या निकला, मंदिर में लोग भगवान की माला थोड़े फेरते हैं, दानदाताओं की माला फेरते हैं, चाहे 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 अनचाहे, उन दानदाताओं का कृतज्ञ बनते हैं, भाई इसने ये जगह बनाई तो हम बैठ सके, भाई ये बहुत बड़ा दानी है, देखो उसने ये मंदिर बनाया तो हम पूजा कर सके। और आजकल तो मंदिरों का नाम जैसे लक्ष्मी नारायण का मंदिर होगा लेकिन उसको कहते हैं लोग बिड़ला मंदिर, मंदिर तो लक्ष्मी नारायण का है पर वो किसका कहलाता है, जिसने बनवाया उसका कहलाता है। तो वास्तव में दान का उद्देश्य ये था कि लोग भगवान से जुड़े, लेकिन हमने उनको अपने से जोड़ लिया। कई लोग यहाँ आते हैं तो ये सवाल पूछते हैं नए भाई बहन, भई ये इतना बड़ा आपका बना हुआ है आखिर ये किसने बनवाया, यहाँ किसी का नाम लिखा हुआ है, किसने बनवाया, कब बनवाया, किसकी स्मृति में बनवाया, कौन सी कुर्सी किसकी याद में दान की गई, कौन सा कमरा किसके नाम पर दान किया गया, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। इसलिए यहाँ जो भी बैठेगा जहां भी बैठेगा उसको कौन याद आता है, शिव बाबा याद आता है, ये कुर्सी शिव बाबा की है, ये कॉन्फ्रेंस हॉल शिव बाबा का है, टेबल शिव बाबा की है, माइक शिव बाबा का है, सोफा शिव बाबा का है, जो भी कुछ है सुई से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज तक सब कुछ किसका है, बाबा का है। और हमको सिखाया भी यही है, बाबा का है सब कुछ, बाबा का है, इवन कि हमारे घर में जो भी कुछ है वो भी बाबा का है। और भक्ति मार्ग में तो लोगों ने जो मंदिर वाला था वो भी अपना बना लिया, वो भी बाबा का नहीं रहने दिया, उल्टा हो गया। कई लोग कहते हैं कि अगर ऐसा करेंगे ना तो लोगों को दान की प्रेरणा मिलेगी, देखो भाई तुम्हारा नाम हो जाएगा इसलिए तुम भी दान करो। लेकिन कहते हैं जैसी चीज होती है उससे प्रेरणा भी वैसी ही मिलती है। वास्तव में लिखे हुए नाम को देख करके लोगों को दान करने की प्रेरणा नहीं मिलती, लेकिन नाम कमाने की प्रेरणा मिलती है। तो जो दूसरा देख के दान करता है वो कहता है इसने एक पंखे पे एक का नाम लिखवाया तो मैं एक पंखे पे तीन पंखुड़ियों पे तीन का नाम लिखवाऊंगा। तो वो नाम की प्रेरणा ग्रहण करते हैं। लेकिन बाबा ने हमको कहा कि बच्चे एक हाथ से दान करो तो दूसरे को पता ना पड़े, क्योंकि कोई भी चीज का हम दान करते हैं, केवल धन की बात नहीं है, अगर हम शक्तियों का दान करते हैं, ज्ञान का दान करते हैं, गुणों का दान करते हैं, सहानुभूति का दान करते हैं, सहयोग किसी को देते हैं, तो उसके पीछे कर्म का सिद्धांत है। पहला सिद्धांत तो ये है कि दिया हुआ वापस जरूर मिलेगा। गेंद को अगर हम जमीन में फेंकेंगे तो जमीन उसको अपने पास नहीं रखती, उसको उतने ही जोर से वापस हमारी तरफ फेंक देती है। तो जो चीज हम दूसरे को देंगे बाई ला, वो उतने ही फोर्स से हमें वापस मिलेगा। और दूसरा ये है कि देना वास्तव में बैंक में डालने के बराबर है। हम किसी पे अगर हम बैंक में 1,00,000 रुपया जमा कराने जाएं, तो हम ये थोड़े कहते हैं देखो भाई मैं 1,00,000 जमा करा के आया, देखो भाई मेरा 1,00,000 जमा है। और ये लोग बैंक में जमा पैसे को गुप्त रखते हैं, किसी को पता ना पड़ जाए। आप कभी अपनी FD बताते हो किसी को कि मेरा बैंक में इतना जमा है? कोई नहीं बताता, किसी को नहीं बताता। कई बार तो हम घर वालों से भी गुप्त पैसा जमा कराते। तो दान करना माना FD बनवाना। तो उस FD को आप सार्वजनिक अगर कर देंगे तो नुकसान हो जाएगा, उसको गुप्त ही रहने दो। दूसरा, दान महापुण्य कब बनता है उसकी कंडीशन है तुरंत दान महापुण्य। संकल्प किया और तुरंत कर दिया। पहले तो महीना भर सोचते रहे, फिर कई महीने उसको करने में लगाया, तो क्या हुआ, वो दान रहा ही नहीं। इसलिए कहती हैं कि संकल्प किया और तुरंत कर दिया। दूसरा आदमी हमें याद दिलाता है भाई तूने कहा था, तूने किया क्यों नहीं, या दूसरा आदमी सोचता है, या बीच में गैप आने के कारण हमारा संकल्प ही बदल जाता है। वो आपने एक बात सुनी होगी, एक व्यक्ति था मंदिर में गया तो उसने महात्मा जी का प्रवचन सुना। महात्मा जी कह रहे थे भाई दान करना चाहिए, दान करना चाहिए। वहां तो स्थूल धन की बात होती है ना, लेकिन यहाँ बाबा ने तो कहा सबसे बड़ा है ज्ञान दान, गुण दान। तो वो तो स्थूल धन की बात कर रहा था, तो उस आदमी को बड़ी प्रेरणा आई। उसने कहा भाई आज तो मैं 100 का नोट दान करके जाऊंगा। महात्मा जी का प्रवचन पूरा हुआ, वो तो अंदर चले गए और लोग जैसे दान की थाली हो जिसमें एक दीपक जला करके और ऐसे वो पंडित घुमाना शुरू करता है, सभा में जो लोग बैठे होते हैं आपने देखा होगा, उसने वो थाली घुमानी शुरू की। तो उसने देखा कि अभी तो थाली 200 लोग आगे है, तो उसके मन में आया अरे आज के जमाने में 100 रुपया तो बहुत बड़ी बात है, कौन देख रहा है, कौन सा नाम लिखा जा रहा है, 50 से ही काम चला लूंगा। फिर थाली घूमती घूमती 100 लोग आगे रह गई। उसने कहा जाने दो 50 रुपए, मैं तो रोज ही मंदिर में आता हूँ, रोज ही 50 देने लगा तो तनख्वाह तो यूं ही पूरी हो जाएगी, 20 रुपया बहुत है। फिर थाली घूमती घूमती 50 लोग आगे आ गई। उसने कहा 20 रुपए बहुत ज्यादा है, 10 से काम चल सकता है, ये लोग भी तो 10-10 ही डाल रही हैं। उसके बाद थाली 10 लोग आगे रह गई, तो उसने देखा कि 1 का सिक्का भी है, 5 का भी है, तो बोला नहीं 10 रुपया नहीं है, 5 वाला ठीक है। फिर देखा थाली 2 लोग आगे रह गई, तो उसने कहा नहीं फर्क थोड़े है, दिखता थोड़े है किसी को, ये 5 का है कि 2 का है, 2 वाला सिक्का ही ठीक है। फिर जब थाली 1 व्यक्ति आगे रह गई तो बोला नहीं 1 वाला सिक्का ही ठीक है। और जब उसके सामने आई तो उसने ऐसे मुट्ठी बंद की और 1 सिक्का डालने के बजाय थाली में से 1 सिक्का उठा लिया। अब महात्मा जी के प्रवचन करने में और दान करने के समय में जो अंतराल आया उसमें उस बेचारे का संकल्प बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया, और आखिरी में देने के बजाय लेवता बन गया, देवता के बजाय लेवता बन गया। इसलिए दान वही महापुण्य बनता है, अभी संकल्प किया और अभी तुरंत दान कर दिया। इसलिए बाबा की जीवन कहानी में हम सबने सुना है, बाबा ने सोचा थोड़े, शिव बाबा को ये थोड़े कहा जरा मुझे 6 महीने सोचने के लिए दे दे, अच्छा चल 2 मास ही दे दे, 10 दिन ही सोचने के लिए दे दे, मैं सोच तो लूं, मैं सब कुछ लगा दूंगा, उसके बाद मेरा क्या होगा, जरा बाल बच्चों का प्रबंध तो कर लूं, उसके बाद जो बचा हुआ है वो कर लूंगा। बाबा ने मोहलत मांगी क्या शिव बाबा से? शिव बाबा ने कहा और ब्रह्मा बाबा तुरंत रेल का राही हो गया, भागीदार से फटाफट हिसाब करवाया, वापस आया और उसके बाद अपने बच्चों को बिठा के बस जरा सा इशारा दिया कि मैं ऐसा करने वाला हूं, और जहां भगवान की आज्ञा हम मानते हैं तो बच्चे भी पीछे पीछे आ ही जाते, तो उन्होंने भी सबने ओके किया और बाबा ने तुरंत दान महापुण्य कर दिया। तो फल क्या निकला, सारा का सारा ही भगवान के बैंक में फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, ऐसे नहीं कि एक चालू खाता रखा और एक फिक्स में डाला, चालू वाले में से कभी निकालना पड़ जाए कभी डालना पड़ जाए, सारा का सारा फिक्स में गया। तो फिक्स में तो ज्यादा ब्याज मिलता है ना, तो बाबा को कितना ब्याज मिला, मूल तो मिला ही मिला, ब्याज भी मिला, पूरे विश्व की बादशाही मिल गई। तीसरा दान का पहलू है कि हम दान करेंगे तो दूसरे की आवश्यकता प्रमाण करेंगे। दूसरे को क्या चाहिए, जैसे बाबा कई बार कहते हैं बच्चे अगर किसी को शांति की जरूरत है और आपने उसको ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया तो वो आपका ज्ञान सुनेगा नहीं, अगर किसी को भोजन की जरूरत है और आपने उसको पानी पिलाना शुरू कर दिया तो वो संतुष्ट नहीं होगा, किसी को सहानुभूति की जरूरत है और उस समय आपने उसको प्रवचन करना शुरू कर दिया तो प्रवचन का कोई फायदा नहीं होगा। मान लीजिए एक बच्चा बेचारा गड्ढे में गिर गया और हम प्रवचन कर रहे हैं कि भाई तुमको देख के चलना चाहिए था, तुम तो रोज इस रास्ते से जाते हो, तुमको पता होना चाहिए था, या ज्ञान सुनाना शुरू कर देते हैं भाई तुम भगवान को याद करो, भगवान तो सर्वशक्तिवान है, उसने तो हाथी को भी जब वो कीचड़ में फंस गया था उसको भी निकाल दिया था तो तुमको भी निकाल देगा, तो हमारा प्रवचन सुनेगा वो बच्चा? उस समय हमारा फर्ज क्या है, उस समय तो उसको हमारे हाथ की जरूरत है, हमारे सहयोग की जरूरत है, भले हमें थोड़ी बहुत कीचड़ भी लग जाए लेकिन हम अपना हाथ दे करके उसको उसमें से निकालें, फिर उसे नहलाएं धुलाएं साफ करें और उसकी थोड़ी मदद करके उसे अच्छी अवस्था में लाएं, और उसके बाद अगर उसे ज्ञान सुनाएं तो शायद वो ज्ञान सुन भी ले। इसलिए जो उस समय की उसकी करंट जरूरत है, बीमार आदमी को पहले 2 मीठे बोल चाहिए, दवाई चाहिए, पानी चाहिए, सहानुभूति चाहिए, उसके बाद वो ज्ञान सुनेगा। भूखे आदमी को पहले रोटी चाहिए, उसके बाद वो ज्ञान सुनेगा। थके हुए आदमी को पहले आराम कराओ, उसके बाद वो ज्ञान सुनेगा। और जिसके मन में बहुत चिंता और तनाव है, पहले उसकी चिंता और तनाव का जरा मीटर डाउन आए, उसके बाद वो ज्ञान सुनेगा। तो इसलिए जो उसकी पहली आवश्यकता है उसको हमको पूरा करना है, वो दान उस समय फलीभूत होगा, फलदायी होगा। और उसके बाद जो दूसरी आवश्यकता है, स्टेप बाय स्टेप, फिर वो दूसरी को भी सुनेगा, तीसरी को भी सुनेगा। उसके बाद दान का चौथा पहलू है कि दान में जो चीज दी जाए वो अच्छी क्वालिटी की हो, उत्तम क्वालिटी की हो, बढ़िया हो, बढ़िया चीज हमको देनी है, क्योंकि जो हम देंगे वो कई गुना होकर के हमको वापस मिलेगा। इस पे आपने सुनी होगी नचिकेता की कहानी, नचिकेता शास्त्रों में बहुत वर्णन आता है, उसके पिता का पिता राजा था, तो एक बार उसने यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद गौएं वो दान में देने लगा ऋषियों को, तो सब गौएं बूढ़ी थी, तो पुत्र कोई 13-14 साल का था, उसने हस्तक्षेप किया, उसने कहा पिताजी दान की चीज तो उत्तम होनी चाहिए, ये बूढ़ी गौएं इनको ये ऋषि लेके क्या करेंगे, इनसे इन ऋषियों को क्या फायदा होगा, चारा खिलाते रहेंगे इनको, पालते रहेंगे, मिलेगा तो कुछ भी नहीं। इसलिए दान की वस्तु उत्तम होनी चाहिए, जो बढ़िया क्वालिटी की गोए हैं वो दान करो। अब पिता को छोटी आयु का बच्चा शिक्षा दे तो पिता को क्या होता है मालूम है ना, क्या होता है, अहंकार आता है, क्रोध भी आता है। वो कहते हैं छोटी सी जान और गज भर की जबान। तो पिता को भी गुस्सा आ गया, उसने कहा कि तुम चुप रहो। तो गोए तो दान में दे दी। अब बच्चे के मन में तो बड़ा चल रहा था, उसने कहा अच्छा आप मुझे किसको दान में दोगे। तो गुस्से में था, उसने कहा मैं तेरे को यम को दान में दूंगा। यम माने मृत्यु। बच्चे ने उसी बात को स्वीकार कर लिया है, तो आगे तो बड़ी कहानी है। लेकिन जब बच्चे ने उसको स्वीकार कर लिया और पिता ने एकांत में बैठ करके सोचा, तो उसको समझ में आया कि सचमुच जो हम देते हैं वो किस लिए देते हैं, कि भी हमको पुण्य मिलेगा। लेकिन अगर हमने किसी को ऐसी चीज दे दी जो हमारे काम की नहीं थी, उसके भी काम की नहीं है, तो पुण्य उसको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारी खराब चीज को उसने स्वीकार किया। तो धन्यवाद का पात्र तो वो हो गया, हम थोड़े हुए, हमारे पास तो वो बेकार थी और उसने वो बेकार चीज स्वीकार कर ली, तो पुण्य उसके खाते में गया, हमारे खाते में थोड़े पुण्य आया। कई लोग, बहुत नहीं लेकिन कुछ गिने चुने लोग, बाबा के घर में भी ऐसा कर लेते हैं। कहते हैं भाई खेत में से दाल निकली है, अब जो बढ़िया वाली दाल है बिना कंकर वाली वो तो हम खा लेंगे, और जो कंकर वाली है उसका क्या करें। वो कहते हैं आश्रम में दे आओ, बहने खाली तो बैठी रहती हैं, चुनती रहेंगी, है ना। घर में फ्रिज नया वाला आ गया तो कहते हैं पुराने वाला दे दो, उसकी कुछ कुछ टूटा हुआ अंदर से, कहते हैं फिर क्या हुआ, है ना? दान का दान और चीज भी सफल हो जाएगी, हमारे यहाँ तो दो फ्रिज रखने की जगह नहीं है। तो पुण्य का पुण्य मिलेगा, तो कोई भी खराब चीज हो जाए वो दे दो और बढ़िया वाली चीज हमारे लिए, नया मकान बनेगा उसमें हम रहेंगे, और वो जो पुराना था जिसकी छत टूटने वाली थी, जिसकी वो गिर रही थी वो ऊपर से, वो वाला आश्रम को दे दो, पुण्य का पुण्य हो जाएगा। अगर गिरेगी तो भगवान अपने आप रोकेगा, क्योंकि हमको क्या चिंता है। एक बार मैं एक आश्रम पे रहती थी तो वहां पे एक भाई आता था, तो वो बहुत कहता था बहन जी मैं वकील हूँ, महीने की मुझे इतनी आमदनी है, लोग आते हैं मेरी टेबल पे 5-5, 10 हजार रुपया रख जाते हैं। और वो वहाँ का मुख्य भाई था, और जो आश्रम की हालत थी वो ऐसी थी कि कभी इधर से दीवार गिरती थी, कभी इधर से वो सीमेंट गिरती थी। तो वो ऐसे बैठा बैठा सुना ही रहा था मुझे, इतनी देर में छत की एक बहुत सारी पपड़ी टूट करके और हम दोनों के बीच में गिरी, मेरा भी सिर बच गया, उसका भी सिर बच गया। तो मैंने उसको कहा कि भी तुम्हारी टेबल पे तो लोग गड्डियां रख के जाते हैं और हमारे सामने देखो छत की ये पपड़ियां टूट टूट के गिरती हैं, अब तुम्हारी गड्डियां कब काम आएंगी भगवान जाने। उसको काफी महसूस हुआ, फील हुआ। खैर बाद में तो वहां पे आश्रम बन गया। तो क्या होता है कि हम देते समय कई बार देने में संकोच कर जाते हैं, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि जो हम दे रहे हैं वो हमको कई गुना होके वापस मिलेगा। देना वास्तव में बीज बोना होता है। अब धरती में जब हम बीज बोते हैं तो गला सड़ा बीज बोते हैं कि बढ़िया वाला बीज बोते हैं? बढ़िया वाला बोते हैं ना, बढ़िया बोएंगे तो फसल बढ़िया मिलेगी। एक चना आपने बोया उसके बदले में 100 चने मिलेंगे, लेकिन आपका बोया हुआ चना बढ़िया होगा तो एक मटर बोया बदले में 200-500 मटर मिल जाएंगे, लेकिन मटर का दाना बढ़िया होगा तो अगर वो गला हुआ हुआ, कच्चा हुआ, भुना हुआ हुआ, सड़ा हुआ हुआ, थोड़ा आधा टूटा हुआ हुआ तो क्या होगा? तो आपको बदले में कुछ नहीं मिलने वाला। आप कितने भी दिन इंतजार करते रहना कि उसका फल निकला क्यों नहीं, फल निकला क्यों नहीं, जब बीज ही खराब था तो फल कैसे निकलेगा। इसलिए ये भी एक नियम है कि आप जो बीज बो रहे हो वो उत्तम क्वालिटी का हो। आजकल देखो सरकार बीजों पे कितना ध्यान देती है, जगह जगह बीजों की दुकानें खोलती है, और ये जगह जगह प्रचार करती है कि बढ़िया क्वालिटी का बीज लेना, बीज सस्ते भी देती है, उसको मालूम है कि बीज बढ़िया होगा तो फसल बढ़िया होगी। तो हमारा कर्म रूपी बीज अच्छा होगा तब हमें बदले में कई गुना फल मिलेगा। और दान की पांचवी कंडीशन है कि दान सुपात्र को दिया जाना चाहिए। पात्र के दो मतलब होते हैं, एक होता है बर्तन जिसमें हम चीज डालते हैं ना, उसको पात्र बोलते हैं। मान लीजिए हमको उस बर्तन में खीर डालनी है, लेकिन बर्तन गोबर से लिपटा हुआ है तो हमारी खीर क्या हो जाएगी, हमारी खीर भी खराब हो जाएगी, गंदी हो जाएगी। और पात्र का दूसरा मतलब होता है लेने वाले आदमी का मन, वो मन भी अच्छा होना चाहिए। उसका मन गंदा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या हिंसा विकार इन सबसे भरा है, और ऊपर से हमने उसको दे दिया बहुत सारा पैसा, तो परिणाम क्या होगा, गंदे मन में वो पैसा जाकर के भी गंदा हो जाएगा, गंदे कार्य में लगेगा। कुछ दिन पहले हमको एक भाई ने अनुभव सुनाया कि मैं बहुत गरीब घर में पैदा हुआ, बहुत मुश्किल से हमारी पालना होती थी, बड़ा हो गया शादी हो गई, लेकिन मेरा एक चाचा बहुत अमीर था, उसको कोई बच्चा नहीं था। धीरे धीरे वो बूढ़े हो गए और मैं बड़ा हो गया शादी हो गई, तो चाचा ने मेरे पिता को कहा कि मैं इस बच्चे को गोद ले लेता हूँ, मुझे गोद ले लिया। अब चाचा के पास बहुत बैंक बैलेंस था, मकान बहुत बढ़िया था, घर में सुख के साधन बहुत थे, चीजें सब कुछ था, और क्योंकि मैं गरीबी में पला था तो मैं जाते ही उन सब का मालिक बन गया। कुछ समय के बाद उन दोनों ने शरीर छोड़ दिया, सब कुछ मेरे हाथ में आ गया। अब मैंने देखा कि मुफ्त में खाने को मिल रहा है और बैंक में पैसा बहुत सारा था, अब मुफ्त में मिला खाने को, रोकने टोकने वाला कोई था नहीं, तो मैंने जितने भी गलत काम थे, जितने भी गलत खान पान था, गलत जगह आना जाना था, वो सब करना शुरू कर दिया। मैं इतना बिगड़ गया, इतना व्यसनी बन गया, इतना विकारी बन गया, समझो पूरा राक्षस बन गया। जब गरीब घर में था तो आदतें अच्छी थी, और मुफ्त का पैसा मिला तो पूरा ही राक्षस बन गया। अब मुझे सुधारे कौन, क्योंकि कोई बड़ा तो कहने वाला था नहीं, और मैं इतना बिगड़ा, इतना बिगड़ा, बिल्कुल कंगाल हो गया। जब मुझे अपनी बेटी की शादी करनी पड़ी तो कर्ज लेना पड़ा, बैंक से भी, कुछ लोगों से भी, जमीन बेची कर्ज लिया, तब मैंने शादी की। कहां तो बैंक में पैसा था, इतने जमीन का मालिक था, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पैसा मिल गया और मन के अंदर उस पैसे के मिलने से, मुफ्त का पैसा मिलने से, कहते हैं कमाई वाला पैसा जो होता है ना, उसको अगर उड़ाएं तो दर्द होता है, लेकिन मुफ्त का पैसा मिले तो उड़ाने में बड़ा मजा आता है। आजकल कई लोग आते हैं, कई यूथ युवा लोग आजकल के आते हैं, हम पूछते हैं भाई तुम्हारी क्या इच्छा है, तो हमको तो बता देते हैं, सोचते हैं ये आश्रम में रहने वाले, इनको तो दिल की बात सच्ची बता दो। कहते हैं जी हमारा एक ही सपना है सरकारी नौकरी मिले बस, कम से कम भी 20,000 की। कई लोग तो पत्र भी लिखते हैं, ज्ञानामृत में पत्र संपादक के नाम है ना, उसमें पत्र भी लिखते हैं, शिव बाबा बस 20,000 की नौकरी मिल जाए, बस काम कुछ ना करना पड़े, जाके बैठ करके ऑफिस में आ जाएं और 20,000 की नौकरी, बस अगर आप ऐसा करा देना हम आपको मान जाएंगे और आपको हम खूब याद करेंगे। अब जिसको कुछ भी काम ना करना पड़े और महीने का 20,000 मिल जाए, बताओ वो क्या करेगा उस 20,000 से, क्या करेगा, पुण्य कमाएगा, अपनी माँ की सेवा करेगा, अपनी बहन को देगा, या कोई धर्मशाला मंदिर बनवाएगा, क्या करेगा? वो बैठ कर के जो पैसा मिलेगा वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, हम सब जानते। और अगर मेहनत करके मिले तो, मेहनत करके अगर आदमी 10-20 रुपया भी कमाता है ना, वो उसे लाख के बराबर लगता है। मेहनत करके जो पैसा मिलता है उसको वो नोट कहते हैं, नोट को तुड़वाना नहीं चाहता वो, अगर टूट गया तो सारा चला जाएगा। और जो मुफ्त में मिलता है उस नोट को वो बंधा नहीं रखना चाहता। तो सुपात्र को दो, अगर वो व्यक्ति चरित्रवान है तो आपके पैसे का सदुपयोग करेगा। कई लोग कहते हैं कि भाई दया आती है, क्या करें, ट्रेन में आते जाते हैं किसी का पांव कटा देखते हैं, बड़ी दया आती है। दया एक अच्छी चीज है, सहानुभूति एक अच्छी चीज है, भगवान भी दया का सागर है, दया होनी चाहिए। जिसमें दया नहीं होती वो इंसान नहीं होता, जिसमें सहानुभूति नहीं होती वो इंसान नहीं होता। लेकिन जैसे कहते हैं ना, भावना और विवेक दोनों का संतुलन चाहिए। अब उस आदमी के पांव की ये हालत है तो बाबा ने हमको कर्म की गहन गति समझाई, ऐसा क्यों हुआ, कारण है ना उसके पीछे। अगर हम कहें देखो भगवान ने ऐसा कर दिया तो भगवान ने फिर सबके साथ ऐसा क्यों नहीं किया, एक के साथ ही क्यों किया? क्या भगवान पार्शलिटी करता है? क्या भगवान के सारे बच्चे उसको प्यारे नहीं है? तो उस व्यक्ति को देख करके दया भी आनी चाहिए और साथ साथ कर्मों की गहन गति भी स्मृति में आनी चाहिए। उस आदमी को हमें अपना गुरु भी बना लेना चाहिए कि देखो इसने कोई ऐसा कर्म किया जिसके फलस्वरूप ये बेचारा आज दुखी है, हम जीवन में भूल करके भी कोई ऐसा कर्म न करें जिसका फल हमें छोटे दुख के रूप में भी भोगना पड़े। वो हमारा गुरु भी है एक प्रकार से, हमें शिक्षा दे रहा है, वो हमें बता रहा है कि सावधान हो जाओ, मैंने गलती की पर तुम गलती मत करना। रही बात दया की, तो दया करने के कई तरीके हैं। दया में आप उसको कोई मल्लम दवाई पट्टी कर सकते हो, उसे कोई भोजन की चीज खिला सकते हो, लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी दया का दुरुपयोग हो जाए। वो खुद अगर असमर्थ है और आपने उसको 100 का नोट दे दिया, वो बेचारा खुद तो उस 100 के नोट का कोई सदुपयोग कर नहीं पाएगा, कोई उसके ऊपर होगा वो उससे छीनेगा, और कोई ऐसा भी आएगा जिसको मालूम पड़ेगा वो धक्का मार के या उसकी पिटाई करके उससे ले लेगा। आपकी दया और उस व्यक्ति के लिए बन गई मुसीबत। इसलिए दया का ऐसा रूप दिखाना चाहिए जिस दया का परिणाम उसके लिए लाभकारी निकले, आगे के लिए वो कुछ सीखे या सुरक्षित भी रहे। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात सुनाते हैं, भारत की आजादी के समय एक बार वो रेलवे स्टेशन पे था तो एक व्यक्ति आया, बोला मुझे कुछ भीख दे दो। उसने कहा मैं भीख नहीं देता, हाँ मैं तुझे पैसे दे सकता हूं अगर तू इस पैसे से कोई धंधा करे। तो उस जमाने में 5 रुपए बहुत बड़ी चीज होती थी। उसने कहा मैं धंधा करूंगा। बोला क्या करेगा? बोला मैं इसी स्टेशन पे कोने में मूंगफली की एक रेड़ी लगाऊंगा, लोगों को मूंगफली तो टाइम पास करने के लिए चाहिए ना। तो उसने विश्वास करके उसको 5 रुपया दे दिया और 1 साल के बाद वो पुनः उसी स्टेशन पर आया तो वो लड़का दौड़ता हुआ उसके पास आया, उसको 5 का नोट वापस देने लगा, वो तो भूल चुका था। उसने फिर सारी कहानी सुनाई कि देखो आपने मुझे 5 रुपया दिया था, उसकी मैंने मूंगफली खरीदी और उस 5 रुपए की मूंगफली से मेरा धन बढ़ता गया बढ़ता गया। आज देखो मेरे पास मूंगफली भी है, बचत भी है, और आपने जो दिया था वो कृतज्ञता से मैं आपको वापस लौटाना चाहता हूँ। विद्यासागर जी बहुत खुश हुए कि देखो इसने मेरे 5 रुपए का कितना सदुपयोग किया, पांव पे खड़ा हो गया। अब ये भिखारी नहीं है लेकिन अब ये एक व्यापारी है। और ऐसे ही अगर ये उन्नति करता रहा तो आगे और आगे बढ़ जाएगा। तो अगर कोई इस तरह से हमारे पैसे का सदुपयोग करता है तो उस पैसे से तो हमको दुआ भी मिलेगी, वो भी पांव पे खड़ा रहेगा। हमने उसको मोहताज नहीं बनाया लेकिन हमने उसके ऊपर जिम्मेवारी का ताज डाल दिया। मोहताज बनाना खराब बात है, अपने अधीन किसी को कर लेना खराब बात है, किसी को कर्म करने से विरत कर देना खराब बात है। लेकिन अगर हम किसी को कुछ दे करके कर्मठ बना दें तो समझो हमने उस पर बहुत बड़ा उपकार किया। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सुपात्र को दो। और मान लो हमारे पैसे से किसी ने गलत चीज खरीदी, जैसे एक कहानी आपने सुनी होगी, एक राजा था, देह त्याग के जब ऊपर गया तो चित्रगुप्त ने उसका खाता देखा। बाबा कहते हैं चित्रगुप्त तो मेरा ही नाम है। चित्रगुप्त का वास्तव में अर्थ क्या है? जिसका चित्रगुप्त है। हमारा चित्र तो प्रत्यक्ष है ना, हमारा शरीर तो सामने दिखाई देता है ना, लेकिन शिव बाबा का चित्र तो गुप्त है, चित्रगुप्त बाबा ही है। तो चित्रगुप्त ने उसका खाता देखा, उसने कहा भाई इसके खाते में तो लाखों मछलियां मारने का पाप है। तो राजा ने कहा नहीं नहीं मैं तो बड़ा धर्मात्मा था, मैंने ये धर्म किया। बड़ी लंबी चौड़ी उसने अपनी लिस्ट सुनाई, हर महीने ये करता था, दरबार लगाता था, जरूरतमंदों को ये देता था। तो कहा नहीं भाई इसके खाते में तो है, गलती हो नहीं सकती, भगवान के खाते में गलती नहीं होती, यहाँ के खातों में तो गलती हो जाती है, कंप्यूटर में गलती हो जाती है, क्योंकि कंप्यूटर को चलाने वाला भी तो आखिर इंसान ही है ना, लेकिन भगवान के यहाँ गलती नहीं होती है। तो उसने बताया कि इस राजा ने जो दान किया, तो एक दिन एक मछुआरे का जाल फट गया था। उसने सोचा राजा दान तो करता ही है, तो वो लाइन में लग गया, दान लेने की लाइन में लग गया, और जो दान में उसे चीज या वस्तु मिली उसको बेच करके उसके बदले में उसने जाल खरीद लिया, और उस जाल से उसने खूब मछलियां पकड़ी, बेची। अब काम कर रहा था मछुआरा, लेकिन धन किसका लग रहा था? राजा का। तो जिस कार्य में जिसका धन लगेगा वो भागीदार तो होता है ना। आजकल यहाँ ऐसी कंपनियां होती हैं, ऐसी बिजनेस होती हैं, भाई मैं धन लगाऊंगा और मेरे पास टाइम नहीं है, दुकान में तू बैठना, ऐसा होता है ना। तो दोनों को भागीदार माना जाता है, जो लाभ मिलता है उसमें दोनों का हिस्सा होता है, हानि होती है उसमें भी दोनों का हिस्सा होता है। तो ऐसे ही राजा ने धन लगाया और मछुआरे ने कर्म किया, तो उस कर्म का जो लाभ या हानि होनी थी उसमें दोनों भागीदार हो गए ना, तो राजा भागीदार हो गया। तो अगर हमने किसी को दिया, किसी ठंड में ठिठुरते आदमी को आपने कंबल दे दिया, उसने आपसे कंबल ले लिया, आपने 100 रुपए का कंबल खरीदा था, थोड़ा आगे जाके उसने दुकानदार को कहा भाई मेरे को पैसे की जरूरत है, तू 50 रुपए में ले ले। दुकानदार का क्या जाता है, वो तो 50 में ले लेगा और उसे 100 में बेचेगा, 50 रुपए फायदा हो गया। तो वो 50 रुपए का क्या करेगा, आपने जो कंबल दिया उसका क्या करेगा, उसको किस लिए चाहिए 50 रुपया? वो तो मांग रहा है, आपसे मांगा, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, आपने देखा होगा लोग यहाँ कंबलों की तह लगाए जाते होते हैं कई बार सर्दियों के दिनों में, है ना। तो हमको ये भी पड़ताल करनी जरूरी है कि हमने जो चीज दी उसका आखिर परिणाम क्या निकला। कई लोग कहते हैं कि आजकल सुपात्र मिलते नहीं है, मिलते नहीं है तो सुपात्र बनाओ, पहले उसे सुपात्र बनाओ और उसके बाद फिर उसको मदद करो। सुपात्र कैसे बनाएंगे, पहले उसे ज्ञान दो, उसे समझ दो कि भी तुझे सारा जीवन भिखारी बने रहना है कि तुझे बादशाह बनना है। अगर तू बादशाह बनना चाहता है तो मैं तेरे को ये चीज दे सकता हूँ, अगर भिखारी बना रहना चाहता है तो फिर मैं भिखारियों को दान नहीं देता, मैं तो बादशाहों को देता हूँ, बादशाह बनाता हूँ। जैसे शिव बाबा ने हमको क्या कहा, शिव बाबा कहता है मैं सबसे बड़ा फिलान्थ्रोपिस्ट हूँ, सबसे बड़ा दाता हूँ, लेकिन हमको दे करके उसने हमको क्या बना दिया, क्या बना दिया, हम सब क्या बन रहे हैं, बादशाह बन रहे हैं ना। भगवान ने हमको दिया और हम बादशाह बन रहे हैं, हमको क्या नशा, हम विश्व के मालिक बनने वाले। शिव बाबा से रोज लेते हैं ज्ञान रतन, लेते हैं शिक्षाएं, लेते हैं, लेकिन लेते समय हमको ये पक्का है कि जितना हम अधिक लेंगे उतना हम बड़ा पद प्राप्त करेंगे। इसलिए हमको लेने का भी शौक है, लेने की भी लगन है, लेकिन साथ साथ हमारी नजरें नीची नहीं है, लेकिन हमारी नजरें उठी हुई है, हमको गर्व है कि इसको लेते लेते हम बादशाह बनेंगे। तो जो हमसे ले उसको भी ये नशा चढ़े कि इसको लेंगे तो हम अपने पैरों पे खड़े होंगे या हम समर्थ बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। आज लिया फिर कल फिर लेने आ गया, फिर परसों लेने आ गया, तो वो तो बेचारा जीवन भर लेने की लाइन में ही लगा रहेगा, लेकिन एक दिन लेकर के वो भी देने वाला बन जाए, ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बाबा ने कहा पुण्य आत्मा बनने वाले की निशानी क्या होगी, हमने जो दान किया उस दान से हमारा पुण्य का खाता बना, हम कैसे चेक करें, वो दान का दानी रह गया या पुण्य तक पहुंच गया, इसकी चेकिंग कैसी होगी? इसकी निशानी बाबा ने बताई कि दान करने के बाद अगर आपका पुण्य का खाता जमा हुआ तो आप व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होते जाएंगे। जीवन में व्यर्थ का खाता खत्म होता जाएगा। एक तरफ पुण्य का खाता बढ़ेगा और दूसरी तरफ व्यर्थ का खाता खत्म होता जाएगा। ये जितना ऊंचा उठेगा वो उतना डाउन जाता जाएगा। जैसे एक झूला होता है ना, उसमें बच्चे बैठते हैं, भारी वाले को बिठा दो तो वो नीचे चला जाता है, हल्के वाला ऊपर चला जाता है। दोनों तरफ बराबर बराबर हो तो झूला बराबर रहता है। तो हम देख सकते हैं कि व्यर्थ का खाता हमारा कितना कम हो रहा है। पहले हमें किसी बात पे क्रोध आता था, अब नहीं आ रहा, इसका मतलब पुण्य जमा है। पहले किसी बात को देख करके हम दुखी हो जाते थे, अब नहीं होते, माना पुण्य का खाता जमा हो रहा है। पहले कोई विकार आके हमें दबोच लेता था, कभी आलस आ जाता था, कभी मोह आ जाता था, अब ये धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, इसका मतलब पुण्य बढ़ता जा रहा है। पहले हमारे अंदर कई तरह की नकारात्मक वृत्तियां थी, हैं, कभी रूठते थे, कभी उदास होते थे, कभी मूड ऑफ करते थे, हैं, कभी कुछ और आता था, कई तरह के है ना विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब हम देख रहे हैं कि वो कम होते जा रही हैं, तो इसका मतलब पुण्य का खाता बढ़ता जा रहा है। तो एक तरफ पाप का खाता खत्म होगा और दूसरी तरफ पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा। ब्राह्मण मोटे पाप तो नहीं करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों में व्यर्थ संकल्पों की बीमारी तो है ही। तो हम बाबा के बच्चे अपनी उस व्यर्थ संकल्प की गति को चेक करेंगे। बाकी तो हमारे में नहीं है अभी, लेकिन जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच लेते हैं, जो चीज नहीं देखनी चाहिए उसको देख लेते हैं। ये भी तो व्यर्थ है ना, उसमें समय खराब जाता है, संकल्प खराब जाते हैं और हमारी अंदर की शक्ति भी खराब जाती है। अब इसको रोकने का उपाय क्या है? पुण्य का खाता बढ़े और ये जो हमारे व्यर्थ संकल्प की बीमारी है ये खत्म हो, इसके लिए बाबा ने उपाय बताया। स्लोगन बाबा ने दिया कि दुख देना भी नहीं है और दुख लेना भी नहीं है। बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प तब चलते हैं जब हम दुख ले लेते हैं। हम किसी को दुख देते नहीं है, ये पाठ हमको पक्का हो गया। जो दुख देगा उसको बदले में दुख मिलेगा, इसलिए हम हर कर्म को बहुत सावधानी से करते हैं। नहीं नहीं, ये हमको नहीं करना है, ये हमको बाबा ने मना किया है, ऐसा करेंगे तो इस आदमी को दुख होगा, इसलिए हमने अपने वाणी पे नियंत्रण कर लिया, अपने हाथों पे नियंत्रण कर लिया, अपनी हर बात को नियंत्रित कर लिया, अपने आप को बदलना हम सीख गए। अब हम बदल जाते हैं, अपने को भले थोड़ा नुकसान हुए पर हम दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इसका मतलब हमने एक पाठ पक्का कर लिया कि हमको किसी को दुख नहीं देना है। पक्का कर लिया ना सबने, ये पाठ सबको पक्का है कि हमको दुख नहीं देना, क्योंकि हम सुखदाता के बच्चे हैं, सुखदेव हैं। सुख देना हमारा लक्षण है, हम देवता बनने वाले हैं, देवता किसी को दुख नहीं देते, तो हम कैसे किसी को दुख दे सकते हैं? लेकिन जो दूसरा आधा हिस्सा है वो हमारा कच्चा है। वो आधा हिस्सा ये है कि दुख लेना भी नहीं है। अगर वो भी इतना ही पक्का हो जाए तो हम पूरे पुण्य आत्मा बन जाएंगे। अभी आधे पुण्य आत्मा है। अब दूसरे ने गलत काम किया और उसको देख देख करके हमारे व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? अपने पुण्य के खाते को घटा रही हैं। इसलिए कबीर का दोहा है, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करणगे जो भरणगे तू क्यों भया उदास। बेचारा जाता था, रोज देखता था ये तो गले काट रही है, उसको बहुत दुख होता था, रोज दुखी होता था, रोज सोचता था। आखिर एक दिन उसने अपने मन को समझाया कि भाई मैं रोज दुखी होता रहता हूं, उससे मुझे क्या फायदा, ये करते हैं, इनका किया हुआ इनको मिलेगा, मैं बीच में क्यों पड़ता हूं, मेरी भगवान ने ड्यूटी तो लगाई नहीं, या भगवान बीच में मुझे दलाली तो देने वाला है नहीं, ऐसे काम के बीच में तो पड़ो जिसके बीच में कुछ कमीशन मिलती हो, तो मैं इनको क्यों देखता हूं, क्यों इनका चिंतन करता हूं। एक दिन उसने अपने मन को समझाया और जब मन को समझाया तो ये दोहा उसके मन से निकला कि करण गे सो भरण गे तू क्यों भया उदास। तो दूसरे के कर्म को देख के आप भी अपने मन को समझाओ कि तुम क्यों उदास होते हो, दूसरा गलत काम कर रहा है ना, तो करता रहे। अगर हम कुछ कर ही सकते हैं तो ये करें कि उसे सुधारें, वो तो ठीक है, उससे तो हमारा पुण्य जमा हो जाएगा। जैसे किसी ने हमको सवाल पूछा कि भाई एक शराबी आदमी है, शराब पी के गली में उल्टा सीधा गिर रहा है, धक्के खा रहा है, यहाँ भी चोट लगी है, वहां भी चोट लगी है, उसको देख के बड़े ख्याल चलते हैं, बड़ा व्यर्थ ख्याल आता है, इसके बीबी बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा, अगर ये मर गया तो क्या होगा। अच्छा भाई, ऐसे तो आप शाम तक सोचते रहो, उसको कोई फायदा होगा क्या? अब आप में अगर हिम्मत हो तो आप उसका हाथ पकड़ो, उसे घर तक पहुंचाओ, और जब तक उसे होश आए इंतजार करो, और होश आने के बाद बैठ करके उसे समझाओ कि भाई देखो तेरे को ये नुकसान हुआ, ये हुआ, तू इसको छोड़ क्यों नहीं देता, आ तेरे को छोड़ने का हम तरीका बताते, या हमारे पास ऐसी दवाई है तू वो दवाई खा, है कुछ ना कुछ उसके लिए करो, तो आपका पुण्य का खाता जमा होगा। लेकिन आप ऐसे ही सोचते रहे तो ना उसका भला हुआ और उसको देख करके आपका भी समय गया, संकल्प गया, आपका भी पाप का खाता बना। तो हमको दूसरे को देख करके व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने। फिर चलो ये तो दूसरे की बात है, कई बार किसी ने हमको ही गलत बात कह दी, गलानी कर दी हमारी, तो उसके लिए भी बाबा कहते हैं, मान लीजिए आपको कोई गला हुआ फल दे, आप दुकानदार के पास गए और उसने गले हुए आम आपको दिए, तो आप क्या करते हो? भाई ये निकाल दे इसमें से, ये गला हुआ है, ये काना है, ये थोड़ा कटा हुआ है, ये मेरे को नहीं चाहिए, नहीं लेते हैं ना। तो जैसे हम गली हुई चीज, काणी चीज, खराब चीज नहीं लेते, तो बाबा कहते हैं फिर दूसरे की खराब बात को आप क्यों ले लेते हो? उसको भी कहो भाई ये मेरे काम की चीज नहीं। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे मिसाल है, महात्मा गांधी का मिसाल है, किसी ने उसको बहुत सारी गालियां लिख करके दी और कागजों को पिनअप करके दिया, महात्मा गांधी ने पढ़ा, उसमें से पिन निकाल ली, कागज लौटा दिए, बोला जी मेरे काम की चीज थी वो मैंने रख ली, ये मेरे काम की चीज नहीं है, वापस ले लो। अंग्रेज ने देखा ये तो वैसा ही हर्षित है जैसा कागज देने से पहले था। क्यों हर्षित था? क्योंकि उसे काम की चीज मिल गई, एक पिन की जरूरत थी वो मिल गई, काम की चीज मिले तो हर्षित क्यों नहीं होगा आदमी, और बेकाम की चीज थी वो वापस लौटा दी। अच्छा अगर किसी ने गली चीज हमको दे दी, मान लो हमको आई गई, हमारी गलती से आ गई, धोखे से आ गई, तो क्या करो? उस गली हुई चीज को अपने बगीचे में डाल दो, फूल की जड़ में डाल दो, वो गली हुई चीज की खाद बनेगी, और खाद से आपका जो पेड़ है, पौधा है, वो पनपेगा, तो उसको देख देख करके आप खुश होंगे। तो गली हुई चीज का भी सदुपयोग करो, पर दुखी मत हो उसको देख करके। रामकृष्ण परमहंस के जीवन की एक बात सुनाते हैं, ये सन्यासी लोगों का तो एक सिस्टम है भाई, ये भिक्षा मांग के खाती है और एक आवाज देते हैं, तो वो भी ऐसे ही बेचारा गया, बहुत पहुंचा हुआ सन्यासी था, बाबा भी मुरली में उसकी महिमा करते हैं, कहते हैं बहुत कड़ा सन्यासी था। तो गया एक घर के सामने, एक माता थी, उसका अपने घर में झगड़ा हुआ था, बहू के साथ हुआ कि बेटे के साथ हुआ पता नहीं, पर वो बड़बड़ा भी रही थी और पोछा भी लगा रही थी, तो बड़बड़ाते बड़बड़ाते दुखी हो रही थी, मैं ही काम करती हूँ, कोई करने वाला नहीं है, ये उम्र कोई काम करने की है क्या, फिर भी करना पड़ता है, ऐसे वो कर रही थी। तो इतनी देर में सन्यासी ने आवाज लगाई, माता भिक्षा दे। अब वो गुस्से में तो थी, उसने कहा इस पोचे से पीछा छूटेगा, मैं यही इसको भिक्षा में दे देती हूँ, वो ऐसे करके और उसकी झोली में फेंका, वो उस पोचे को लेके चला गया, अपनी कुटिया पे जाके उसको सुखा दिया। सुखाने के बाद उसका एक एक तार निकाला, पहले तो कॉटन के ही कपड़े होते थे ना, और पोचा तो कॉटन के कपड़े का, मोटे कपड़े का होता है, उसके तार आसानी से निकल जाते हैं, उसके तार अलग अलग कर लिए, तार अलग करके उनका जो बट था वो खोल दिया, वो कॉटन बन गई वापस, आधे कपड़े की कॉटन बना करके, क्योंकि संन्यास का एक नियम होता है कि सन्यासी को जो भी चीज मिलेगी उसका वो दुरुपयोग नहीं करेगा, उसका वो सदुपयोग करेगा, उसे वो सोने का तार समझ करके स्वीकार करेगा, उसके बारे में ये नहीं सोचेगा कि ये घटिया है, सदुपयोग करेगा। तो उसने वो क्या करे, उसकी कॉटन बनाई और कोई था कोई ऐसा ही प्रोग्राम, तो उसमें उसका दीपक जलाया और वो बुढ़िया भी वहां पहुंच गई, उसने देखा कि मेरा आधा कपड़ा तो यहाँ सूख रहा है जो मैंने दिया था, बाद में तो गुस्सा उतर गया था उसका। पूछा तो उसको मालूम पड़ा कि ये जो दीपक जल रहा है मेरे उस पोचे की बनाई गई रुई का दीपक जल रहा है। उसको बड़ी ग्लानी हुई कि अरे मैंने क्या किया और देखो इन्होंने मेरी चीज का क्या कर लिया। अब किसका पुण्य बना? लेने वाले का देखो कितना पुण्य बना, खराब चीज को भी उसने अच्छा बना लिया और उसके कर्म की यादगार बन गई। आज भी हम उसके कर्म को याद कर रहे हैं। तो जो ग्लानी को भी महिमा के रूप में स्वीकार करे वो बनता है पुण्य आत्मा। जो दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार करे उसको कहते हैं पुण्य आत्मा। जो नकारात्मक को भी सकारात्मक बना ले उसको कहते हैं सच्चा तपस्वी। इसलिए मम्मा कहती थी ग्लानी करने वाले को दिल से गले लगाओ, वो सचमुच आपका उपकार कर रहा है क्योंकि वो पुण्य आत्मा बनाने में आपका मददगार है। अगर वो ना होता तो आप पुण्य आत्मा कैसे बनते? धन्यवाद उसका जो उसने मुझे पुण्य आत्मा बनाया। अब सतयुग में कोई पुण्य आत्मा पुण्य का खाता जमा नहीं कर सकता। देवताओं की उतरती कला क्यों हो जाती है मालूम है? इतने महान देवता, इतने ऊंचे देवता, पर उनका पुण्य का खाता कम होता जाता, कम होता जाता, कम होता जाता। क्यों? क्योंकि पुण्य बनाने के निमित्त वहां कोई है ही नहीं, वहां कोई ग्लानी करने वाला नहीं, वहां पर कोई विरोध करने वाला नहीं, जिसके कारण उनका पुण्य का खाता बढ़े। तो उनकी उतरती कला और हमारी चढ़ती कला, क्यों चढ़ती कला? कोई विरोध करने वाला आया पुण्य जमा हो गया, कोई ग्लानी करने वाला आया पुण्य जमा हो गया, कोई दुख देने वाला। लेकिन तब जब दुख को सुख के रूप में स्वीकार किया, उसने दुख दिया और हमारा मूड खराब हो गया, हमने रोना शुरू कर दिया, तो फिर पुण्य नहीं जमा होगा। ऐसे तो दुनिया में कर ही रही है लोग, किसी ने एक बात कही और हमने सारा दिन खाना नहीं खाया, किसी ने एक बात कही और हम सारा दिन सारी रात नहीं सोए, वो तो कर ही रही है दुनिया में लोग, वो भी पाप का खाता बनता है। लेकिन दुख को बदल दिया, सुख बना लिया, ग्लानी को महिमा बना लिया, बुराई को अच्छाई बना लिया, घटिया चीज को बढ़िया बना लिया, ये चमत्कार हम कर सकते हैं। बाबा ने हमको ये विधि सिखाई है ये चमत्कार करने की, इसी को तो ज्ञान का चमत्कार कहते हैं। लोग कहते हैं भाई आप कोई चमत्कार दिखाते हो, आपके शिव बाबा ने आपको कोई चमत्कार सिखाया है? ये कितना बड़ा चमत्कार है कि एक बात को सुन के दूसरा तो रोया और हम उस बात को सुन के मुस्कुराए, ये चमत्कार नहीं है क्या? इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा? इसलिए पुण्य आत्मा बनने के लिए बाबा ने बहुत सरल तरीका बता दिया। अगर हम ये दो बातें जीवन में पक्की कर लें कि ग्लानी नहीं है हमारी तारीफ है और ये दुख नहीं है लेकिन वास्तव में छिपा हुआ सुख है। मैं एक जगह गई तो एक भाई ने मुझे कहा कि बहन जी मैं बड़ा अभागा हूं। मैंने कहा भाई क्या क्या हुआ? तो बोला देखो माउंट आबू जाने की मेरी 4 बार टिकट बनी और 4 बार कैंसिल हो गई, देखो ना मैं कितना अभागा हूं। मैंने कहा भैया तू बड़ा भाग्यशाली है, बाकी लोगों को माउंट आबू जाने का संकल्प ही नहीं आया, तेरे को संकल्प तो आया, और बाकी लोगों ने अपनी टिकट का पैसा खर्च करने की हिम्मत नहीं की, तूने 4 बार वो हिम्मत दिखाई तो तू तो बहुत भाग्यशाली। अब 4 बार तूने वो काम किया, 5वीं बार तू वहां पहुंच भी जाएगा। तो हर बात को अगर हम अपने भाग्य के साथ जोड़ लें, हर बात को अगर हम पॉजिटिव लें, हर बुराई में भी अगर हम भलाई देखें तो क्या होगा? पुण्य का खाता जमा होता जाएगा। इसलिए हमको पुण्य आत्मा बनना है, ये हमको दृढ़ संकल्प करना है, पुण्य का खाता प्रतिदिन जमा करना है, हर संकल्प में, बोल में, कर्म में, दृष्टि में, चाल चलन में, हर बात में, हर एक्टिविटी में। जैसे कहते हैं ना बर्फ को जिधर से भी छुओ तो ठंडक मिलती है, तो बाबा के बच्चे को कोई कभी भी देखे, कहीं भी देखे और किसी भी रूप में देखे तो उसको उससे पुण्य की अनुभूति हो। इसलिए देवताओं की हर इंद्री को कहते हैं कमल करण, कमल हस्त, कमल पाद, वास्तव में ये हमारी यादगार है। और हमारी इंद्रियां कमल करण, कमल हस्त, कमल पाद ऐसे बन जाती हैं तो समझो हम पुण्य आत्मा बन गए, यही तो पुण्य आत्मा की निशानी है। तो हम सबको क्या बनना है? पुण्य आत्मा बनना है। इसके लिए रोज क्या करना है? पुण्य कर्म करने है, पुण्य कर्मों का खाता जमा करना है। ओम शांति।
संग खेलूं तुम संग।